समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है जन स्वास्थ्य सुरक्षा में स्वच्छता की भूमिका। स्वास्थ्य और स्वच्छता एक दूसरे से जुड़े हैं। स्वस्थ शरीर मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, जबकि स्वच्छता जरूरी है खुद के लिए, आसपास के वातावरण के लिए और बीमारी से बचाव के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गलियों सड़कों को साफ सुथरा रखना और साथ ही खुले में शौच मुक्त देश घोषित करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न गंदगी करूंगा न करने दूंगा का मंत्र भी दिया। जन स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता की भूमिका पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के औषधि विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बाल रोग विभाग के प्रोफेसर डॉ अनु माहेश्वरी। नमस्कार, स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत।
नमस्कार।
नमस्ते मैम।
श्रोताओं, आपके मन में स्वस्थ समाज के लिए स्वच्छता के महत्व से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल गई हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 011 यानी जो दिल्ली का कोड है 2331-0481 और 2371-7117 2371-7106 और 2331-44 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289044 पर भी भेज सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, धर्मवीर दिल्ली से जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम से, उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए।
नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार।
जैसे कि डॉक्टर साहब, देखा ये गया है कि जो गंदगी है जो आम आदमी ही फैलाता है, हम लोगों के घरों से ही निकलती है और जितना ज्यादा से ज्यादा इनका प्रचार होता है उसको अभी भी समझ नहीं आती। ये छोटा सा पाउच होता है 1 रुपए का शैम्पू का, वो हम फाड़ते हैं, लगाते हैं और फेंक देते हैं, वही तो जा रहा है। अब गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया जाए जो डेली रेगुलर बेस पे जो वेस्ट पे जाता है और वो फिर कभी खत्म समाप्त नहीं होता। आपके द्वारा ये बताया गया है और हमारे इधर आसपास जितनी मर्जी सफाई रखने हैं पर आम आदमी की इसमें भागीदारी होनी जरूरी चाहिए। उनको ये नहीं मालूम कि हम तो कूड़ा उठा के अपनी बालकनी से नीचे फेंक देते हैं, सफाई कर्मचारी आता रोज रोज। इस पे कोई कानून सख्त होना चाहिए कि जो ऊपर से नीचे कूड़ा फेंकते हैं सफाई कर्मचारी को मालूम है पर वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते। गवर्नमेंट को भी चाहिए, MCD को भी चाहिए इस तरह की जो चीजें हैं उस पे।
जी धर्मवीर जी, आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? ये तो आप जागरूकता की और उसकी बात कर रहे हैं।
हाँ, स्वच्छता के लिए जो है जो बीमारियां फैलाते हैं पड़ोसी, तो इसके लिए हमें अपने सावधानी कितनी हमें बरतनी चाहिए।
डॉक्टर साहब, ये कि दूसरे फैला रहे, एक तो उन्हें ही रुकना चाहिए लेकिन बाकी लोगों को फिर और क्या ध्यान रखना चाहिए?
जी, जैसा उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि जागरूकता इनमें है, खुद भी न फैलाएं और कोशिश करें अपने आसपास के लोग जिनके जो कि सफाई और स्वच्छता को लेकर ज्यादा सजग नहीं है उनके अंदर में जागरूकता फैलाएं। यहां मैं एक बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह समुदाय की कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है। इसकी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले में होनी चाहिए।
जी डॉक्टर अनु, आपसे पूछें, जैसे जो खासतौर से गर्भवती महिला हैं या छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां होने की आशंका रहती है जहां स्वच्छता नहीं होती वहां?
थैंक यू लवलीन जी फॉर अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बार जो यंग माएँ होती हैं, जो स्पेशली जिनका पहला बच्चा हुआ होता है, उनके इंटेंशन तो हमेशा अच्छा होता है। देखिए, कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कभी खराब नहीं करना चाहेगी, तो नॉलेज बहुत जरूरी है। तो एक तो जो बेटियां हैं हमारी, जो गर्ल्स हैं, उनको हमें एजुकेट करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है डायरिया, दैट इज लूज मोशन, और निमोनिया। ये छोटे बच्चों को सबसे भयंकर बीमारियां हैं, इससे बच्चे की मौत भी हो सकती है। एंड ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि माँ साफ सफाई रखे ताकि उनके बच्चे इन बीमारियों से बचे। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी माओं को, आप अपने बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाइए, ऊपर का दूध नहीं पिलाइए। एंड कोई भी आपको एडवाइस दे, उन हर एडवाइस को सुनने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने सरकारी डिस्पेंसरी में जाइए, अस्पताल में जाइए अगर कोई भी दिक्कत होता है। एंड छोटे बच्चों को माँ का दूध के अलावा कुछ भी मत दीजिए।
ये कोई बीमारी है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। बिहार से मोहन पासवान जी का एक सवाल है, जानते हैं वो उनका सवाल क्या है। जी मोहन जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
जी मैडम धन्यवाद, प्रणाम इकट्ठे।
प्रणाम
मैडम, मैं छठ पर्व के शुभ अवसर पर आकाशवाणी परिवार राज्य देश दुनिया में छठ मनाने वाले परिवार को शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ सर।
जी धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं, सवाल पूछिए।
जी प्रणाम मैडम, मेरा प्रश्न है कि भारतीय समाज के सभी वर्ग धर्म के लोग का स्वास्थ्य एवं शिक्षा संपत्ति का बच्चे जवान बूढ़े का सुरक्षित कैसे रहे, ये नियम करना चाहता हूँ। और दूसरी बात है कि जन स्वास्थ्य सुरक्षित रहे उनमें समाज और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या होनी चाहिए, यह मैं जानना चाहता हूँ।
डॉक्टर पीयूष जी, इनके प्रश्न के दो अलग अलग बिंदु हैं। सबसे पहले कि किस तरह से लोग स्वस्थ रह सकते हैं, तो जैसा आज का कार्यक्रम हमारा इस बात के मुतालिक है कि स्वच्छता बनाए रखें, और स्वच्छता बनाए रखने से जो बहुत सारी बीमारियां जैसा कि बताया गया डायरिया हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियों पर हम लोग लगाम रख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया भी है इसके साथ साथ। और जो दूसरा उन्होंने ये बताया कि इसमें जो बड़े समाज की और सरकार की क्या योगदान हो सकता है, तो इसमें मैं फिर से वही बात कहूंगा कि हर चीज हम लोग सिर्फ शासन पर नहीं छोड़ सकते,
सरकार के भरोसे नहीं, हमारी जन भागीदारी,
इसकी भागीदारी जो है खुद से करनी चाहिए।
जी हरियाणा से संजीव कुमार हैं, उनका सवाल जानते हैं जल्दी से। जी संजीव जी।
मैडम जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को नमस्कार।
नमस्कार, नमस्कार। सवाल पूछिए।
जी मैं संजीव कुमार हूँ और हरियाणा से बोल रहा हूँ, गाँव कुकनिया डिस्ट्रिक्ट करनाल जी।
जी
अच्छा मैडम जी, हमें जो है ना कच्चे लेटरिन का वो सरकार की तरफ से बनाया गया था सुलभ शौचालय में कभी 1998 या 2000 में, और उसमें अब कच्चा गड्ढा तो वो भर गया था, टूट भी गया, लेकिन बराबर में हमें कच्चा गड्ढा खोद रहे फेंक, तो उसमें मतलब मक्खियां और मच्छर वगैरह या छोटे मोटे और जीव भी हो रहे, तो क्या क्या किया जाना चाहिए जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, मतलब जैसे गड्ढे में, क्योंकि बाहर जाने को तो अब वो टाइम नहीं रहा, क्योंकि खुले में शौच तो काफी कम हो गया, अब तो सरकार की तरफ से कोई सहायता मिले इस बारे में बताइए कुछ।
इस संबंध में आप जानकारी अपने नजदीक के जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे आप ले सकते हैं, अपने ब्लॉक में जाकर ले सकते हैं। अलग अलग समय में सरकार ऐसी योजनाएं लाती हैं, आप उनकी मदद लेकर के इस चीज को के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
डॉक्टर पीयूष, एक टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर, जिसमें 100 घंटे श्रमदान की बात की गई है, और लोगों को प्रेरित भी करते हैं। इस अभियान में बहुत से नामचीन व्यक्ति जुड़े हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी कुछ दिखाई देने लगे, और जितने हमारे सवाल आ रहे हैं उसमें भी हम घूम फिर के वही आ रहे हैं कि जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है, जन जागरूकता भी बहुत जरूरी है।
जी जन जागरूकता के संबंध में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो विशेष तौर पे हम चिकित्सकों का भी इसमें एक बड़ा योगदान होता है, क्योंकि समाज के लोग हमें एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, और न सिर्फ हम उदाहरण प्रस्तुत करके कर सकते हैं बल्कि छोटी छोटी चीजें, जमाना सोशल मीडिया का है, तो इसके दौरान में हम जो गीत संगीत और इसके माध्यम से भी हम लोग जन जागरूकता फैला सकते हैं। और इसी दौरान में एक प्रयास जो है हम लोगों के द्वारा किया गया था, जिसमें हम लोगों ने एक गीत की रचना की थी, जो कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, तो उसी
समय आगे बढ़ने से पहले चंद पंक्तियां सुन लेते हैं।
हाँ जी
जी।
गली मोहल्ला ताल तलैया घर खेत खलिहान, गली मोहल्ला ताल तलैया घर खेत खलिहान, स्कूल हॉस्पिटल बस गाड़ी देते यही अजान, भैया रखना सफाई का ध्यान, अपना देश बनेगा महान।
तो बहुत अच्छी बात कही गई है, जन जागरूकता, जन भागीदारी बहुत जरूरी है।
सफाई का ध्यान रखने से ही हमारा देश महान बनेगा
जी। जब हम आसपास गंदगी नहीं फेंकेंगे, कूड़ा नहीं फेंकेंगे, तो जाहिर तौर पर है वो सफाई रहेगी। डॉक्टर साहब, एक और बात, हम लोग इस साफ सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंडोर पॉल्यूशन भी होता है जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है, हम अनजाने में वो कर रहे हैं और हमें मालूम नहीं कि इस पॉल्यूशन का असर भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे पड़ सकता है।
जी हाँ, इंडोर पॉल्यूशन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो घर के अंदर में जो जो कोई भी हम लोग अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं या मच्छर भगाने वाली जो क्वाइल जो होते हैं वो जलाते हैं, तो इसके कारण जो धुआं होता है वह हमारे लिए हमारे जो स्वास्थ्य के लिए विशेष तौर पर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इसके साथ साथ जो पैसिव स्मोकिंग होती है, बड़े अगर घर में धूम्रपान कर रहे हैं तो वो लोग बच्चे और या घर के दूसरे सदस्य जो कि धूम्रपान नहीं कर रहे हैं उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और बच्चों से संबंधित इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आंकड़े हैं, स्वास्थ्य संबंधित आंकड़े हैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर अनु इसके संबंध में बताएंगे।
छोटे बच्चों के लिए एक्चुअली जो छोटे बच्चे हैं जब खांसी जुकाम बुखार लेके आते हैं तो सबसे कॉमन यही होता है कि घरों में इंडोर पोल्यूशन। हम इंडोर पोल्यूशन को सरकार को नहीं ब्लेम कर सकते, देखो पोल्यूशन तो है ही, बट इंडोर पोल्यूशन जैसे डॉक्टर पीयूष ने कहा, बहुत कुछ हमारे घर में जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं छोटे घरों में रहते हैं, किचन बिल्कुल बगल में है, बेडरूम के बगल में है, वहीं पे छोटा बच्चा रहता है, तो जब भी हम तड़का लगाते हैं या हम जीरा भूनते हैं या कोई मसाले भूनते हैं तो उससे उनको मालूम नहीं होता है, अनजाने में होता है। दूसरी चीज ये कि जो घरों के बड़े जो स्मोक करते हैं, इवन स्मोकिंग नहीं, अगर वो गुटखा भी खाते हैं तो भी छोटे बच्चों के लिए वो बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि जो भी पोल्यूशन है ना वो भारी है, तो वो नीचे जो हमारा कमरा है ना वो नीचे के पार्ट में सेटल हो जाता है, और हमारे बच्चे छोटे होते हैं हाइट में और भागते भी ज्यादा हैं, और उनकी पर मिनट जो सांस लेते हैं वो भी ज्यादा होती है। तो जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, 1 साल से 5 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं, नाजुक होते हैं, इन्फेक्शन, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि खाना कैसे बनाना है, किचन कैसे होना चाहिए, चूल्हा नहीं जलाना है। आजकल तो उज्ज्वला जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है ना, उसके तौर पे एलपीजी गैस वगैरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ गुड नेशन।
मध्य प्रदेश से राशिद खान जी जुड़े हैं कार्यक्रम से, जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी राशिद जी नमस्कार, सवाल पूछिए।
नमस्ते नमस्ते मैम, आप सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सभी लोगों को।
आपको भी शुभकामनाएं, सवाल पूछिए।
जी जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि चारों तरफ जैसे बाटा रिसोर्सेज हैं या दूसरे एयरबोर्न डिजीज और बाटर बोर्न डिजीज बहुत ज्यादा फैलते हैं चारों तरफ, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। और दूसरा ये कि एमआर वैक्सीन यानी मम्स और रूबेला की वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें आप।
डॉक्टर साहब, वैसे बरसात के बाद जल जनित बीमारियां, क्योंकि अब बरसात चली गई है, लेकिन इवन देन जो गंदे पानी से और उससे बीमारियां होती हैं।
देखिए जो बारिश और बाढ़ के समय में जो कोई भी बीमारी होती है उसमें जो है, लेकिन जो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज जिसके बारे में इन्होंने पूछा है, ये मूल तौर पर जो कि आंत्र स्रोध या पेची जिसे हमें कहते हैं, जिसमें कि डायरिया इससे रिलेटेड होता है, और एक हिपेटाइटिस जिसको कि जॉन्डिस आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ये दो वो बहुत कॉमन बीमारी है जो कि फूड एंड वाटर बॉर्न होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस बात को समझना है कि इसे हम बहुत आसानी से अवॉइड या फिर इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए ये आवश्यक है कि जब कभी भी खाने से पहले, खाने के बाद, शौच में जाने के बाद, इन सबों के बाद जो है अपने हाथ को अच्छे ढंग से साफ करें। साफ करने का ये मतलब होता है कि सिर्फ बहते हुए पानी में ही साफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आप जो कोई भी साबुन हो उसको लेकर के अपने हाथ के दोनों तरफ, उंगलियों के बीच में, नाखूनों के इर्द गिर्द भी आप अच्छे से उस अपने हाथ को साफ,
जैसे डॉक्टर साहब कोविड के टाइम पे बताया गया,
कोविड के समय
में तरीके से
कोविड ने पूरे देश को स्वच्छ रहना और हाथ को साफ करना तो जरूर बता दिया था,
तो उसको कायम उसको बनाए रखना है उस आदत को।
आप फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं।
हरिद्वार से रवि ज्वालिया जुड़े हैं कार्यक्रम से, उनका सवाल जानते हैं। जी रवि, सवाल पूछिए।
हाँ जी, गुड इवनिंग मैम जी।
गुड इवनिंग
जी।
मैम जी, जैसे कि अभी हाल ही में दीपावली का त्योहार मनाया गया है, तो उससे पर्यावरण जैसे प्रदूषित होता है पटाखे से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम अपने आप को पर्यावरण से प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है खुद को।
देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि ऐसा देखा गया है जो कम उम्र के बच्चे और बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो पॉल्यूशन से जो आउटडोर पॉल्यूशन है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। देखिए वर्ष के कुछ ऐसे महीने रहते हैं जबकि पॉल्यूशन और वायु की गुणवत्ता जो है वो बड़े शहरों में कम होती है। अब बड़े शहरों के साथ मझोले शहरों में भी ये देखा गया
प्रॉब्लम आ रही है।
तो उसमें जहां तक संभव हो जब उस समय में जबकि ज्यादा पॉल्यूशन या वायु की गुणवत्ता ज्यादा खराब हो तो कोशिश करें अपने आप को इंडोर रखने का, नंबर वन। यहां मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हमारे आसपास का परिवेश हमारे द्वारा ही बनता है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम खुद उस पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए उसके हिस्सेदार न बने। कई बार ये देखा जाता है लोग अपने आसपास में कूड़ा को जला देते हैं, तो इन सभी चीजों को ये बंद करने की कोशिश करें और इससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ ये लगाएं ताकि जो पॉल्यूशन है उस पर कंट्रोल किया जा सके।
रमा शंकर वाजपेयी रायबरेली से उनका एक सवाल है। जी रमा शंकर जी सवाल पूछिए।
मैं ये पूछना चाहता था कि जो अस्पतालों से निकलने वाला वेस्टेज जिसके केमिकल से आदमी शरीर को हानिकारक क्या हानि पहुंच सकती है कृपया बताएं।
डॉक्टर अनुखास बच्चों का भी और वैसे भी इन जनरल पूछा जाए।
बहुत अच्छा सवाल है रमा शंकर जी। देखिए जो अस्पताल में जो वेस्ट जनरेट होता है उसका एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। ऐसा नहीं है कि हम उठा के उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं। जो भी दवाइयां हैं, कैंसर की दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक है, उनको डिस्पोज करने का पर्टिकुलर तरीका है। ऐसा नहीं, एंड जो बायो मेडिकल जैसे ऑर्गन्स निकाले, प्लेसेंटा निकाला लेबर रूम से, वो ऐसे नहीं होता कि आपने
ऐसे
कूड़ेदान में डाल दिया। ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है रमा शंकर जी। आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट दैट।
इसके साथ ही अगर कायाकल्प के बारे में पूछा जाए, वो भी एक अच्छा वो चलाया जा रहा है अभियान आसपास सौंदर्यीकरण।
कायाकल्प जो है वो जैसे वो हमारी सरकार की तरफ से शहरों के को भी साफ स्वच्छता के आधार पर जो है ये लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाए। हर साल जो है सबसे स्वच्छ शहर इसमें अलग अलग कैटेगरीज में इनाम भी दी जाती है और अलग अल अलग अस्पतालों को भी ये दिया ये कायाकल्प के तहत जो है उनको इनाम और इस तरह से ये दिए जाने की घोषणा की जाती है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने दफ्तरों को अपने अस्पतालों को स्वच्छ रख सकते हैं।
जी स्वच्छ पेयजल जैसे एक वॉश है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन, ये तीनों चीज WHO का, इसके बारे में डॉक्टर अनु जानकारी।
एक्चुअली वॉश एक जो इनिशिएटिव था ये WHO ने लिया था
जी।
बेसिकली दिस वाज टू जो डायरियल डिजीजेस हैं छोटे बच्चों में स्पेशली लेस देन 5 ईयर्स, उसमें बहुत जरूरी था हैंड वॉशिंग हाइजीन। इसी के तहत ना हमारी सरकार ने रोटा वायरस वैक्सीनेशन भी इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज रोटा वायरस वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करने से डायरियल डिजीजेस कम तो हुई हैं, लेकिन हैंड हाइजीन, वाटर हाइजीन, सैनिटेशन, स्वच्छ पेय जल जो आप बोल रहे हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑल दैट इज कम्स अंडर दिस WHO इनिशिएटिव एंड इट इज मार्केडली रिड्यूस्ड। बहुत जो डायरिया की डिजीजेस है वो बहुत कम हो गए हैं वॉश इनिशिएटिव के बाद, एंड हमारी सरकार ने जो रोटा वायरस वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस किया है इवन दैट हैज हेल्प्ड अस।
शिमला से राकेश जी का सवाल है, जल्दी से जानते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। जी राकेश जी सवाल पूछिए।
जी नमस्कार।
नमस्कार
सर, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कई बार बाजार जाते हैं, हम कई बार जो है जैसे जलेबी है, पकौड़े हैं या पेपर में जो है अखबार के पेपर में पैक करके ले जाते, तो इसको इसका कितना नुकसान है जो हम पेपर में जो है खाने की चीज जो है ले जाते, जैसे परांठे भी कह रहे, कई बार हम परांठे भी लेते हैं पैक करके अखबारों की कागज पेपर में, कितना खा सकते
हैं। हाँ जी, देखिए इसमें दो अलग अलग बातें हैं। जहां तक संभव हो बाजार में या खुले में जो स्ट्रीट फूड हम लोग कहते हैं उसे खाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। खान पान की चीजें जितनी स्वच्छता से बनाई जाएं, घर की हो उसी से खाएं। जो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसके साथ फैल सकती हैं, ये पहली बात
जी।
जब कभी भी हम लोग ये जब कभी भी जैसे टिफिन या दूसरी चीज में हम लोग ले करके लंच बॉक्स में ले करके जाते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि जो नॉर्मल आपके घर का जो बर्तन हो लंच बॉक्स हो उसी में लेकर के जाएं। आम तौर पर अखबार पर या इसमें जिसमें कि कोई और अगर प्रिंटेड मटेरियल वाले पेपर हैं वो कितना साफ है इस पर यह निर्भर करता है। यहां जब बात निकली तो ये मैं बता देना चाहूंगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो है उसका भी प्रयोग जो है बाजार में लाते और ले जाते समय जो है लोग करते हैं, इसमें ये जरूरी है इस बात को समझना कि ये प्लास्टिक सदियों तक बगैर बायोडिग्रेडेबल हो करके वातावरण में बने रहते हैं और ये बहुत ज्यादा हमारे आसपास के पर्यावरण को, हमारे नदियों को, हमारे समुद्र को जो है वो खराब करते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक हमारे शरीर में फिर से वापस आ रहा है। तो जहां तक संभव हो सिंगल यूज प्लास्टिक्स को अवॉइड करें, घर या घर के बाहर जो कोई भी हो अपने घर से थैला लेकर के चलें और इन सभी चीजों से हम लोग ध्यान रख सकते हैं।
डॉक्टर अभी वाश के बारे में बताया, जैसे जब से ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, इस बार 5.0 मनाया जा रहा है, कुछ परिवर्तन आप लोगों ने महसूस किया इम्यून सिस्टम में या इस तरीके के केसेस कुछ कम आ रहे हो?
जी, इन जनरल भी जो है वो जैसे जैसे जागरूकता फैली है तो उसका जरूर प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल जड़ से नहीं खत्म हो पाया है। तो इसे लगातार इसको हमें व्यवहार में लाए जाने की जरूरत है। जैसे कोविड में हम लोगों ने हैंड हाइजीन, कॉफ हाइजीन, इसके बारे में समझा था, जाना था, तो उससे इस महामारी को नियंत्रित करने में काफी हमें मदद मिली थी। लेकिन इस अच्छी आदत को लंबे समय तक जारी रखे जाने की आवश्यकता है।
दिल्ली से केशव जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। क्या जी केशव जी, नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए।
नमस्कार मैम, मैं केशव दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जैसे हमारे से भाई बंधु आते हैं, कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी, सेवा कर्मचारी, तो वो हमारी जैसे ध्यान रखते हैं सफाई का, तो सरकार उनके लिए क्या ध्यान रखती है, क्या प्रोटेक्शन करती है उनके लिए?
इन जनरल मतलब कि जो कूड़ा भी उठा रहे हैं, अगर हम इस सवाल को ऐसे पूछें कि जो कूड़ा उठाने आए हैं या कूड़ा बीन रहे हैं, उन लोगों को किस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, इसके लिए ये जरूरी रहता है कि जो हरेक मरीज को, जैसे अभी डॉक्टर अनु ने बताया, अस्पताल के अंदर भी और इन जनरल भी, उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए जाते हैं। आपने देखा होगा जो कोई भी सरकारी जो कि सफाई कर्मचारी, उनको लंबे बूट पहनाए जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो उनके हाथों में ग्लव्स जो रहते हैं वो मोटे रबड़ की बनी रहती है। तो इन सभी चीज से जहां तक संभव हो वो मास्क लगा करके रहते ताकि उनका बचाव हो सके। यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है। हम लोग जब भी घर से जब कूड़ा भेजें तो कूड़ा को अलग अलग जगह पे सेग्रीगेट करके,
जो आजकल थैलियां,
जो थैलियां अलग अलग है, जो शार्प कटिंग, अगर ये शार्प कटिंग अगर कोई अगर जो कूड़ा है तो उसको अलग से ये करके रखे, ताकि उसको हैंडल करते समय जो हमारे अपने सफाई कर्मचारी हैं वो एक्सीडेंटली उसमें इंजर्ड ना हो जाए।
जी, और डॉक्टर अनु, जैसे आपसे पूछ रहे थे कि गर्भवती महिलाओं का स्वच्छता जिस दौरान प्रेगनेंसी, उस दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए, और जो आपने 6 महीने का ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम बोला, किस चीज का माओं को खास ख्याल रखना चाहिए?
माओं को सबसे पहले तो ये ख्याल रखना चाहिए कि उनको टेंशन नहीं करना, बिकॉज आप जितनी एंग्शियस होंगी, जितनी आपको एंग्जाइटी होगी, जितना डिप्रेशन होगा, जितना आप परेशान रहेंगी, दूध नहीं आएगा, है ना। और सबसे पहले आपको ये जानना है, जब भगवान बच्चा देता है तो भगवान माँ को क्षमता भी देता है दूध पिलाने की, तो 6 महीने तक उनको ये ध्यान रखना है कि देखिए, बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, मैं ये नहीं कह रही कि सारे खराब है, लेकिन कुछ कुछ बहुत ही मुझे समझ नहीं आते, जैसे माओं को नहाने ना देने, नहाने नहीं दिया जाता दो दो हफ्ते, तीन तीन हफ्ते, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि मटर्नल हाइजीन, जो माँ की हाइजीन है, वो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। एंड फिर माँ को और बेबी को बॉन्ड नहीं किया देना चाहते हमारे कुछ इंडियन हाउसहोल्ड्स में, जैसे क्या होता है, माँ को कहते हैं नहीं तुम आराम करो, एंड सास बच्चे को लेके या उसकी माँ बच्चे को लेके उसको पाल रही होती, जो नहीं होना चाहिए। माँ को बच्चे के साथ बॉन्ड करने दीजिए, तभी वो ब्रेस्ट फीड करेगी। दूसरा, ये लंबा चौड़ा चूड़ियां पहनना, अंगूठियां पहनना, नेल पॉलिश लगाना, ये जरी वाली साड़ियां पहनना, जो कि आप कभी धोते नहीं है, इनको ड्राई क्लीन भी पता नहीं कब कराते हैं, तो ये सब छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। प्लस जरी, मोती, ये सारी चीजें बच्चों की सांस की नली में जा सकता है, तो आपको ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हमें चेंज करने की जरूरत है, लेकिन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हमारी बहुत अच्छी भी हैं, जैसे हम अजवाइन का पानी देते हैं, गोंद के लड्डू देते हैं, मदर को हम बैक मसाजेस के लिए बोलते हैं, ये सारी चीजें जो है माँ के दूध को उत्पन्न अच्छे से करती हैं और बच्चे को obviously it helps the child।
डॉक्टर पीयूष, ऐसी और कौन कौन सी छोटी आदतें आप बता सकते हैं जो हमें दैनिक जीवन में अपनानी चाहिए स्वच्छता की दिशा में, जो बीमारियों से, जो गंदगी से होती हैं, उनसे बचा जा सके?
देखिए, सबसे पहले अपने हाइजीन का ध्यान रखें। तो जब कभी भी हाथ धोएं, इन जनरल लोग कहते हैं कि हाथ धोते खाने से पहले या खाने के बाद हाथ को धोएं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप सही ढंग से हाथ धोएं
जी,
ठीक है, सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ साबुन से हाथ धोए। जो डेंटल जो कैविटी के बारे में होता है, दिन में कम से कम दो बार अच्छे ढंग से आप अपने ये दांत का ब्रश करें
जी।
फिर उसके बाद जो रेगुलर नहाने और इससे संबंधित तो हैं ही ये बातें, कॉफ हाइजीन, कॉफ इटिक्वेट का आप ध्यान रखें, छींकते खांसते समय जो है जो कोविड के समय में सिखाया गया था उसका प्रयोग करें। जब कोई भी फल फूल आप लेकर के बाजार से आए, फल फूल सब्जियां, उसको अच्छे से बहते हुए पानी में अच्छे से धोएं, तभी आप उसका सेवन करें। और उसके बाद जैसे भी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को ताजा पका हुआ भोजन करें। इन सभी चीजों के माध्यम से अगर हम लोग इसका पालन करेंगे तो जो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज होता है उसका हम लोग कंट्रोल। यहाँ और भी जरूरी यह बात है कि अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि अगर आपको साफ पानी की गुणवत्ता को लेकर के अगर आप संदेह में हैं तो आप पानी को छान करके उसे उबल जाने दें, उबलने के बाद उसे ठंडा हो जाने दें, तभी उस पानी का सेवन करें। तो इस तरह से हम लोग जो है फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज को स्वच्छता के इन ये उपायों का प्रयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं।
क्योंकि देखा है डॉक्टर अनुप, पानी से लेकर बहुत बीमारी होती है, वो चाहे जॉइंटिस हो या फिर अगर आगे हेपेटाइटिस हो जाता है, कॉलेरा, तो बहुत जरूरी है कि पानी से संबंधित उसको उबाल के पिए या बाहर भी जो पानी मिल रहा है उसको भी थोड़ा सोच समझ के वही इस्तेमाल करना चाहिए।
पानी जो है ना मैम, हमें जो लगता है हमेशा कि नहीं पानी तो हम साफ ही पी रहे हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते जिस पानी में आपने आटा गूंदा या जिस पानी में आपने चावल पकाए है ना, 20 मिनट तक उबालने पे पानी शुद्ध होता है ना
जी।
तो क्या सरकार हमें ना क्लोरीन के टैबलेट्स पुराने जमाने में अभी भी देते हैं शायद? हमारे जब मैं अंडर ग्रेजुएट थी तब हम जाते थे अम्बेडकर नगर एंड यहाँ वहाँ गांव में बल्लभगढ़ में, तो वहां पे ना क्लोरीन के टैबलेट देते थे
जी।
तो 20 लीटर पानी में उनको ये बोला जाता था कि जब आपको नहीं पता कि ये पानी साफ है या नहीं, आप 20 लीटर पानी में ये टैबलेट डालिए और आधे घंटे में वो पानी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्लोरीन टैबलेट्स कैन बी यूज बाय पब्लिक। एंड दूसरा, पानी सिर्फ पीना नहीं मैम, जिसमें आप खाना पका रहे हैं, जिसमें दाल पका रहे हैं, जिसमें आप आटा गूंद रहे हैं, जिसमें आप नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं,
ब्रश कर रहे हैं,
हम पानी साफ सफाई से रखें। आरओ पता नहीं कितना फीजिबल है, बट जहां तक हो सके आप आरओ का इस्तेमाल। मैम कैन आई जस्ट टेक वन मोर मिनट?
हाँ हाँ बोलिए।
एक जो चीज जो मैंने देखा कि आजकल लेप्टोस्पायरा भी काफी फैल रहा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंड फूड्स हैं आजकल, जो बच्चे हैं बड़े फॉन्ड हैं कि ये कोक का कैन और ये जिंजर एल का कैन, हाँ। कैन दूध के कैन, ये कैन लेके ये पी लेते हैं,
डायरेक्ट मुंह से लगा के पी लेते हैं।
तो उसको ना हमें साबुन से ही धोके देना चाहिए, क्योंकि वो गोडाउन में पड़े रहते हैं, रैट्स होते हैं वहां पे गोडाउन, तो वी शुड मेंटेन दैट। एंड अनदर रिक्वेस्ट टू द मेल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, प्लीज स्टॉप पब्लिक यूरिनेशन, विच इज वेरी वेरी सैड। इट हैपेंस आउटसाइड स्कूल्स, आई मीन मैंने अपने स्कूल, मेरे बच्चों के स्कूल के बाहर बहुत कैंपेन किया, पुलिस को इन्वॉल्व किया, इन्वॉल्व एवरीवन, बट नथिंग हैपेंड। सो प्लीज रिक्वेस्ट टू द मेल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री दैट स्टॉप यूरिनेटिंग इन द पब्लिक।
डॉक्टर पीयूष, बहुत जरूरी बात डॉक्टर अनु ने कहा कि ये छोटी बातें जैसे अभी आया रैपर मत फेंको या ये, उससे ज्यादा जरूरी ये चीजें होती हैं कि
जी, खुले में शौच और मूत्र का जो हम लोग त्याग करते हैं वो जरूर उस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए।
और शहरी या ग्रामीण इलाकों की भी बात करें तो स्वच्छता अभियान, स्कूलों में प्रतिदिन बच्चों को साफ सफाई के बारे में जागरूक करके स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, वो भी एक जरूरी चीज है कि
बचपन से ही उनको ये सिखाया जाए तो ये आदतें उन तक उनके अंदर में चली जाती है।
तो कुल मिला के देखा जाए तो ये है कि हमें खुद अपने उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, ना हम गंदगी मचाएं ना गंदगी मचाने दें, जहां से हमने मोदी जी के उस टैगलाइन से शुरू किया था वहीं से हम कहते हैं। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साथ ही नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के औषधि विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाल रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनु माहेश्वरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
जी।
आज का कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnst@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का यह अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभरात्रि।